किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा नए पुराने लेखकों द्वारा लिखी दिल छूने वाली हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें। देश को स्वतंत्र कराने हेतु अनगिनत नवयुवक और युवतियों ने बलिदान दिया, पर वे अज्ञात ही रहे। 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर सुनिए आचार्य चतुरसेन जी द्वारा लिखी कहानी पीर नाबालिग। एक ऐसे ही तरुण के साहसपूर्ण कारनामों का वर्णन उसी के रोचक अंदाज में। वाचन है निधि बासु का। डिस्क्लेमर, बीड़ी सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। कभी कभी बनारस चला आया करता हूँ। काम करते करते जब बहुत थक जाता हूँ या दिमाग में कोई उलझन पड़ जाती है या बीवी से बिगाड़ हो जाता है, तब बनारस ही एक ऐसी जगह है जहाँ आकर दिमाग ठंडा हो जाता है। दशाश्वमेध घाट से छत वाली एक बड़ी नाव पकड़ और शरद की प्रभातकालीन धूप में गंगा की निर्मल लहरों पर तैरती हुई कश्ती की छत पर नंगे बदन एक चटाई पर औंधे पड़कर वहां के सिद्ध हस्त मालिश करने वालों से बदन में तेल मालिश कराना, दूधिया छानना और फिर किसी साफ सुथरे घाट पर और कभी कभी बीच धार में ही गंगा की गोद में चपल बालक की भांति उछल कूद कर जल क्रीड़ा करना, फिर उसी गंगा की लहरों पर हंस की भांति तैरती हुई कश्ती की छत पर बैठकर कचौरी गली की गर्मा गर्म कचौरियां और रसगुल्ले उड़ाना, रस भरे सुवासित मघई पानों के दोने पर दोने खाली करना, मन में कितना आनंद, बेफिक्री, ताजगी और मस्ती भर देता है। रात को बनारस की मलाई और पान की गिलोरियां वो लुत्फ देती हैं जिसकी कल्पना भी दिल्ली के कचालू के पत्ते चाटने वाले नहीं कर सकते। मित्र मंडली भी काफी जुट गई है। यद्यपि मित्रों में ना कोई नेक नाम लीडर है, ना नामी गरामी वकील, ना कोई रईस। कुछ नौजवान दोस्त हैं, लोग उन्हें गुंडा कहकर बदनाम करते हैं, पर मुझे उनकी सोहबत चंद्रोदय, मकरध्वज, च्यवनप्राश और मदन मंजरी वटी से भी ज्यादा ताकत देने वाली साबित हुई है। मेरे ये बेफिक्रे दोस्त जब मेरी जेब के पैसों से दूधिया छान, कचौरियां हजम कर, मलाई चाट कर, पान कचरते हुए कैप्स्टन के सुगंधित धुएं का बवंडर मेरे चारों ओर उड़ेरते हुए हर तरह मुझे खुश करने और हंसाने के जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, तब मैं हरगिज अपने को लॉर्ड वेवल से कम नहीं समझता। और इन दोस्तों की बदौलत एक हफ्ते ही में इस कदर मस्ती और ताजगी दिमाग और शरीर में भर ले जाता हूँ जो सैकड़ों रुपए की दवाइयां खाने पर भी नहीं मुअस्सर हो सकती। जो लोग नैनीताल, मसूरी, कश्मीर और शिमला जाते हैं, मेरी राय में वे झक मारते हैं। मैं उनसे कहूंगा वे बनारस आएं, चित्रा में पान खाएं और मेरे बेफिक्रे दोस्तों की सोहबत का मजा उठाएं। हाँ, ये बात जरूर है, उन्हें लाजिम है कि वे अपना बड़प्पन, बुजुर्गी, मनहूसियत और लियाकत को अपने घर पर ही या तो अपनी बीवी के सुपुर्द कराएं या सेफ में बंद कराएं। मेरे दोस्त ऐसे बड़े लोगों के पास नहीं फटक सकते। इस बार कई महीने बाद बनारस आया था। तमाम गर्मी दिल्ली के जलते हुए मकान में बितानी पड़ी। काम का बोझा इतना था कि दिमाग का कचूमर निकल गया था। अब बनारस में आकर जो गंगा की निर्मल लहरों के ऊपर शरद के अमल धवल हिमश्वेत बादलों के बीच द्वादशी के चांद को आंख में चौनी करते देखा तो तबीयत हरी हो गई। एक दिन गंगा की गोद में सांध्य गोष्ठी की ठहरी। दोस्तों ने लंबी छुट्टी की कसर निकालने के लिए दूधिया की जगह लाल परी का प्रोग्राम चढ़ दिया। रात दूध में नहा रही थी और मेरे बेफिक्रे दोस्त लाल परी के रंग में लाल गुल्लाला हो रहे थे। मैं अलस भाव से उनके बीच पड़ी चटाई पर पड़ा मंद मंद हिलती हुई कश्ती की थपकियों का आनंद ले रहा था। इस बार मंडली में एक नए दोस्त की आमद हुई थी। ये नया अदद ऐसा था कि उसने बरबस मुझे अपनी ओर खींच लिया। पिचके हुए गाल, सफेद रुई के गोले के समान, लंबी नाक की नोक नीचे झुककर होंठ से सलाह सी कर रही थी। उसी नोक पर गिलेट फ्रेम का एक भद्दा सा चश्मा रखा था। बिखरे हुए रूखे खिचड़ी बाल, आगे के तीन दांत गायब, पान से बाहर तक रंगे हुए होंठ, बदन पर एक साधारण चेक डिजाइन की कमीज, कमर में बहुत ढीला मैला पैजामा जिसका एक पायचा फटा हुआ, पैरों में बिना ही मोजे के बहुत भारी शू जिनमें फीते नदारद और धूल गर्द इतना कि साफ कहा जा सकता है कि फैक्ट्री से निकलने के बाद उन्होंने पॉलिश की सूरत ही नहीं देखी। दुबले पतले कोई छटांग भर के आदमी थे, न हंसते थे, न बोलते थे, न इठलाते थे, न मचलते थे। एक के बाद दूसरी बीड़ी जेब से निकालते और फूंकते जा रहे थे। मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। परिचय पूछा तो एक दोस्त ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही कहा, आप पीर नाबालिग हैं। दोस्त के होंठ ही नहीं, आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। मैंने उठकर कहा, तब तो मुझे आपका अदब करना चाहिए। और मैंने जरा उठकर आदाब अर्ज किया, पीर नाबालिग बनकर भी ना बने। ठंडे ठंडे सलाम लेकर गंभीरता से बीड़ियां फूंकते रहे। मैं ध्यान से उनकी ओर घूर कर देखता रहा। एक दोस्त ने कहा, आपके पास कुछ शिकायत करने आए हैं। मैं हैरान हो गया, शिकायत? दोस्त के चेहरे पर शरारत की रेखाएं साफ दिख पड़ रही थी। उसने नकली गंभीरता से कहा, जी हां, शिकायत। आपको सुनना होगा और मुनासिब बंदोबस्त करना होगा। मैं समझ गया कि कोई दिलचस्प फिगर है। मैंने भी वैसी ही गंभीरता से कहा, तो मैं सब कुछ कर गुजरने पर आमादा हूं, फरमाइए। पीर नाबालिग ने धीरे से कहा, बनारस में जयप्रकाश जी आए हुए हैं, आपने सुना होगा? जी, कल रात अखबार में पढ़ा था। बनारस में उन्हें 1,00,000 की थैली भेंट की जा रही है, ये भी आपको मालूम है? हो सकता है, ये तो एक अंधेर है। मैं कुछ नहीं समझा कि मेरे नए दोस्त क्या कहना चाहते हैं। अंधेर? सब दोस्त एक बारगी ही बरस पड़े,
अरे अंधेर नहीं तो क्या,
16 आने अंधेर, फिर हम लोग के रहते। मुझे हंसी आ रही थी, परंतु मैंने उसे रोककर अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, तब तो अंधेर को रोकना होगा, मगर मामला क्या है वो भी तो कुछ सुनूं। पीर नाबालिग ने हाथ की बीड़ी फेंक दी और जरा तेज स्वर में कहा, सुनना चाहते हैं तो सुनिए। भला बताइए तो, जयप्रकाश बाबू को किस बहादुरी के सिलसिले में इतना रुपया मिल रहा है? अरे उनकी बहादुरी और देशभक्ति तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने कितना त्याग किया, कष्ट सहे, और अब देश की आजादी के लिए कितना भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। तब आपको असल बात का पता ही नहीं है। मैंने बिना हुज्जत ये बात स्वीकार कर ली। आप ठीक कहते हैं, असल बात का मुझे सचमुच कुछ पता नहीं है। कुछ बताइए ना भेद की बात। दोस्तों ने भी ललकारा,
बस भाई, अब तुम सब कुछ कह डालो, घोड़े की लात की बात भी ना छुपाओ।
घोड़े की लात की क्या बात है? पीर नाबालिग एक मिनट खामोश रहे, फिर कहा, देखिए ये लीडर लोग ना सब सिर्फ जबान दराजी करते हैं, काम कोई और ही करते हैं। 42 के अगस्त आंदोलन को ही ले लीजिए, क्या आप जानते हैं कि कचहरी से यूनिवर्सिटी तक के तार और खंबे किसने तोड़े थे?
अरे कचहरी पर कलेक्टर की नाक पर पैर रखकर तिरंगा झंडा किसने फहराया था?
नहीं नहीं, ये सब भारी भारी बातें मुझे नहीं मालूम है। आप उस वीर पुरुष का नाम बताइए तो।
पीर नाबालिग क्षण भर चुपचाप सिर नीचा किए बैठे रहे, फिर एक दोस्त की तरफ मुंह करके बोले,
अब हम क्या कहें, तुम बता दो ना बीरबल, सब कुछ तो तुमने देखा था, अब कहते क्यों नहीं।
बीरबल ने बादअब कहा,
अरे आप ही कहिए, आपके मुंह से वे सब कारनामे हम गंगा की पवित्र गोद में बैठकर सुनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं।
तो सुनिए फिर, वो सब आपके इस गुलाम की कार्यवाही थी। हमारे पास एक ही रस्सी थी, उसी से हमने और मोती ने मिलकर एक कांड रच डाला। रस्सी हम तार पे फेंकते और उस पर झूल जाते, पचासों तमाशाई हमारा साथ देते, खंबे और तार अर्रा कर टूट जाते। कचहरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक का मैदान हम दोनों ने साफ कर डाला। सुनकर मैं चमत्कृत हुआ।
मोती कौन?
अरे वो तो अगले दिन ही गोली का शिकार हो गया।
सोचिए, 12-13 बरस का वो लौंडा और उसका ये कलेजा।
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे गोली मेरे ही कलेजे में अभी लगी हो। दोस्त लोग तो शरारत के ही रंग में थे, परंतु मेरे दिल में उस सीधे साधे युवक के प्रति आदर का भाव बढ़ता जा रहा था। कौतूहल भी कम न था। आप इत्मीनान से मेरे पास आकर बैठिए और माजरा विस्तार से सुनाइए, कैसे क्या हुआ था।
एक दोस्त ने कहा,
अमा कचहरी पर तिरंगा झंडा चढ़ाने की बात कहो यार।
वो भी मोती का ही करिश्मा था। कचहरी के सदर दरवाजे के लोहे के फाटक बंद थे, भीतर मशीन गने तैयार थीं, चारों ओर घुड़सवार फौज और पुलिस लाठियों और बंदूक के लिए मुस्तैद थे। वरना पुल से कचहरी बाजार तक आदमी ही आदमी नजर आ रहे थे। किसी ने ललकार कर कहा,
है कोई माई का लाल जो जान पर खेलकर इस कचहरी पर तिरंगा फहरा दे।
बस मेरा खून खौल उठा। मैंने आगे बढ़कर कहा, मैं हूं। मैंने झंडा लिया और एक ही छलांग में फाटक के उस पार हो गया, मगर मोती बिल्ली की तरह फाटक के नीचे से घुसकर मुझसे आगे आ खड़ा हुआ, और जब तक पुलिस आए मैंने उसे कंधे पर खड़ा कर नल पकड़ा दिया, और वो नल पर बंदर की भांति चढ़ गया, जाकर कचहरी पर तिरंगा फहरा दिया। पूछिए मटरू से, वहीं तो खड़ा तालियां पीट रहा था।
मटरू बोला, कहता तो हूं इन्हीं आंखों से ये सब कुछ काम मैंने देखा था, जिसके विवरण सोने की कलम से भारत की आजादी के इतिहास में लिखे जाएंगे।
पीर नाबालिग ने एक बीड़ी निकाली। और सुनाइए, इसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद लाठी चार्ज हुआ। कांग्रेस के लीडरों ने कहा, भागना कोई मत, जमकर लेट जाओ और लाठियां खाओ।
तो आप भी लेट गए?
जी नहीं, मैं उन बेवकूफों में से नहीं हूं जो बैठे बैठे पिटते हैं। मेरा काम खत्म हो चुका था, लाठी चली तो मैं वहां से भागा, फिर भी पीठ पर दो पड़ ही गई।
ये देखिए निशान,
कोहनी भी उसी दिन टूट गई।
यार लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, परंतु मैंने दोनों हाथों में उनकी कोहनी दबाकर कहा,
खैरियत हुई दोस्त, ज्यादा चोट नहीं लगी, आपने अच्छा किया भाग आए।
मटरू बोला, अब घोड़े की लात की बात तो कहो।
अरे लात की बात क्या कहनी है, सामने एक तबेला था, मैं झपट कर उसी में घुस गया, उसमें एक घोड़ा बंधा था, मैं उसी पर जा गिरा,
उसने भी दो लातें कस दी। बस इतनी ही तो बात है।
अरे इतनी नहीं यार, खाट वाली बात भी तो कहो।
एक खाट वहां पड़ी थी, मैं बाहर तो निकल ही नहीं सकता था। घुड़सवार लोगों को कुचल रहे थे और पुलिस वाले लाठी चला रहे थे। उधर घोड़ा नामाकूल लात पे लात मार रहा था। बस मैंने वो खाट अपने और घोड़े के बीच खड़ी कर ली। अब मारता रहे वो लात।
यार लोग भी हंस दिए, परंतु मैं नहीं हंस सका। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पीर नाबालिग बोले, कहिए किया है इतना काम किसी और ने?
मेरा इरादा बिल्कुल इस सरल हृदय वीर युवक का मजाक उड़ाने का नहीं रह गया। मैं चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। उसने फिर कहा,
देखिए क्रांतिकारियों को क्या मैं नहीं जानता? उनके लिए मैंने क्या क्या जोखिम नहीं उठाए। बम और पिस्तौल छिपा छिपा कर कहां से कहां पहुंचाए। कितना खतरा था इन कामों में, भला कहिए तो।
बेशक बेशक, आपके इन कामों का तो कोई मूल्य ही नहीं है।
परंतु साहब, मेरे जैसे न जाने कितने युवकों ने देश के काम में जोखिम उठाई। उनमें से कितने गोलियों के शिकार हुए, कितने जेलों में सड़े, उनको ना तो कोई जानता है, ना कोई उनके जुलूस निकालता है, ना उन्हें थैलियां भेंट की जाती हैं, ना अखबार वाले ही उनकी तारीफें छापते हैं। मरते खपते हैं हम लोग और वाहवाही लूटते हैं ये लीडर लोग। कहिए क्या ये अंधेर नहीं है?
निसंदेह आप जैसे साहसी और वीर युवक की ओर से उदासीन होना जबरदस्त अंधेर है। परंतु एक दिन आएगा आप जैसे हजारों युवकों का उचित सत्कार होगा।
अरे हजारों क्या, लाखों कहिए। परंतु जहां इन लीडरों को बढ़ बढ़ कर बातें बघारने के लिए लाखों रुपयों की थैलियां मिलती हैं और जुलूस निकाले जाते हैं, वहां हम जैसे मामूली आदमी किस कदर सब तरह से बर्बाद कर दिए गए। इसे इन नेताओं तक कौन जनावे? देखिए मेरा बाग बगीचा जमींदारी सभी तो नीलाम कुर्क हो गई। ये लीडर लोग तो हमें जूते साफ करने को भी शायद नौकर ना रखें। ये आंख उठाकर तो हमारी ओर ताकते ही नहीं। इतनी चाय पानी दावतें होती हैं, कभी बुलाया हमको?
युवक के भोलेपन पर मैं मुग्ध हो गया। बहुत रोकने पर भी हंसी आ गई। एक दिन आएगा आपको भी बड़ी बड़ी दावतें दी जाएंगी। अखबार वाले आपका नाम मोटे मोटे अक्षरों में छापेंगे।
तो आप कुछ छपाइए ना, आप तो बड़े भारी लेखक हैं। आप जो लिखकर भेज देंगे, किस अखबार वाले की मजाल है जो ना छापे?
लिखूंगा, जरूर लिखूंगा दोस्त।
खूब बढ़िया सी कहानी बनाकर लिखिए।
कहानी ही बनाकर लिखूंगा।
मेरी फोटो आप छापनी चाहेंगे तो मैं दे दूंगा, एक दो मेरे पास हैं।
अगर जरूरत हुई तो मांग लूंगा।
वो अखबार जयप्रकाश जी के पास भी भेजिएगा आप।
इसकी भी कोशिश करूंगा, परंतु इस समय तो दोस्त एक बहुत ही जरूरी काम करना मुनासिब है।
कौन सा काम?
इसी वक्त आपको एक ठसकदार दावत देना बहुत ही जरूरी है। दोस्त लोग टोपियां उछाल उछाल कर हुर्रा हुर्रा चिल्ला उठे। पीर नाबालिग जरा झेप कर मुस्कुराने लगे। मैंने जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर मटरू के हवाले किया। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म कचौरियों, रसगुल्लों और मलाई पर हाथ साफ होने लगे। बातचीत के दौरान में पीर नाबालिग की बहादुरी की बहुत बहुत तारीफ की गई। तबेले की लातों का बढ़ बढ़ कर जिक्र हुआ।
पीर नाबालिग बहुत खुश हो गए। एकदम दोने में से चार बीड़ा पान उठाकर मुंह में ठूसते हुए बोले,
इस दावत की खबर भी अखबार में छपनी चाहिए। जितनी बड़ी बड़ी दावतें होती हैं, सबकी खबरें अखबार में छपती हैं।
जरूर जरूर, मगर अखबार वालों को खबर कौन देने जाएगा? पीर नाबालिग एकदम खुश हो गए।
ये मटुरुआ साला वही कबीर चौराही पे तो रहता है, वही तो धड़ाधड़ अखबार छपता है, यही जाएगा?
मटरू भाई, तुम्हें अखबार में इस दावत की खबर लेकर जाना होगा। जी माफ कीजिए, इतनी भारी दावत की खबर अकेला बंदा नहीं ढो सकता। हाँ, सब लोग चलें तो मुजायका नहीं।
सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। पीर नाबालिग ने गंभीरता से कहा,
सभी लोग चलें फिर, क्या हर्ज है?
मैंने उठकर उस सरल तरल युवक को छाती से लगाया। अभी आराम करो दोस्त, सुबह इस मामले पर विचार करने को दोस्तों की एक चाय पार्टी होगी, तब देखा जाएगा।
पीर नाबालिग खिलखिलाकर हंस दिए। वे बहुत खुश थे। और जब बहुत रात बीत जाने पर आज की ये दिलचस्प गोष्ठी बिखर रही थी, इसका प्रत्येक सदस्य बाग बाग था। आप सुन रहे थे आचार्य चतुरसेन जी द्वारा लिखी कहानी पीर नाबालिग। वाचन था निधि बासु का, ऑडियो संपादन था प्रवेश का, सितार पर सहयोग दिया आशुतोष मेहरोत्रा ने।
आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो करना ना भूलें।